ஹரி கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா சாப்டர் 15 வர்ஸ் நம்பர் 2. இஸ் ஆத்யாத்மிக ஜான் மே பிரவேஷ் கர்னே சே பஹலே குரு ஆர் கௌரங்க சே கிருபா கி யாச்சனா கர்த்தே ஹுவே மங்களாச்சரண் கரேங்கே தாக்கி ஹம் ஜோ அத்யயன் கர் ரஹே ஹேன் உஸ்கா பூரா பூரா லாப் பிராப்த ஹோ சகே ஜோ கி ஹே கிருஷ்ண பிரேம் கி பிராப்தி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஜனாய சுருன்மீலிதம் தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. ஸ்ரீச்சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமஹயம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுத பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷாம்ஸ ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகண ரகுநாதன்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனசிதம் கிருஷ்ணச்சைதன்யதேவம். ஸ்ரீராதா கிருஷ்ணபாதா சஹகணலலிதா ஸ்ரீவிசாகான்விதாஷ. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதி கோபீஷ கோபிக காந்தா ஸ்ரீராதா காந்த நமோஸ்துதே. சப்தகாஞ்சன கௌரங்கே ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசூதிதேவி பிரணமாமி ஹரி ப்ரியே. வஞ்சாகல்பதருப்யஸ்ய கிருபாசிந்துப்யைவ ச பதிதநாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமஹ. ஜய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைதம் கதாதாரம் ஸ்ரீவாசதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா மாத கி ஜெய ஹோ. சாப்டர் 15 ஜிஸ்கா நாம் ஹே புருஷோத்தம் யோக. அத்தியந்த ஹி மகத்வபூர்ண விஷய பர் பகவான் யஹாம் பர் ஹமே பதா ரஹே ஹே. கியுங்கி யே ஜோ ஜ்ஞான யோக கா வர்ணன் பகவான் நே கியா ஹே, ஜிஸே ஹமே பதா ஹே ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா கே ஷுரு கே 6 அத்யாய் கர்ம யோக பர், ஜோ சென்டர் கே 6 அத்யாய் ஹே வோ பக்தி யோக கோ, ஔர் ஆக்ரி கே ஜோ 6 அத்யாய் ஹே 13 சே லேகர் 18வே அத்யாய் பர் வோ ஜான் யோக கா வர்ணன் விசேஷதயா கர்த்தே ஹே. தோ யே 15வா அத்யாய் ஜோ ஹே உஸ்மே பகவான் சன்சார் விருக்ஷ கா வர்ணன் கர் ரஹே ஹே. ஜேசே ஹம்னே கல் படா தா, பகவான் நே பதாயா தா, ஊர்த்வ மூலம் அத சாகம் அஸ்வத்தம் ப்ராஹுரவ்யயம் சந்தாம்சி யஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம் வேத ச வேதவித். கேக் ஏசா விருக்ஷ ஹே வோ சாஸ்வத் விருக்ஷ ஹே. பகவான் நே கஹா ஊர்த்வ மூல மத சாகம் அஸ்வத்தம் ப்ராஹுர் அவ்யயம். யே அவ்யய ஹே சாஸ்வத் விருக்ஷ ஹே, ஜிஸ்கீ ஜடே தோ ஊபர் கி ஓர் ஹே ஔர் சாகாய் நீச்சி கி ஓர் ஹே ஔர் பத்தியா வைதிக ஸ்தோத்ர ஹே. இஸ் விருக்ஷ கோ ஜோ ஜானதா ஹே வஹ வேதோ கா ஜானனே வாலா ஹே और आज भगवान उसी वृक्ष के विषय में आगे बता रहे हैं। वास्तव में ये जो संसार वृक्ष का वर्णन है ना, वो इस ज्ञान योग का बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। तो ये चैप्टर नंबर 14 में, क्योंकि भगवान ने बहुत ही विशेष तरीके से, बहुत डिटेल से हमें प्रकृति के गुणों के विषय में बताया, अब भगवान ये बताएंगे कि जो प्रकृति के गुण हैं वो इस संसार वृक्ष को पोषण देते हैं। तो भगवान बहुत ही सुंदर रीति से समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 2 में, कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृत्था विषय प्रवाला अधश्च मूलान यनुसंततानि कर्मानुबंधि निमनुष्यलोके। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृत्था विषय प्रवाला अधश्च मूलान यनुसंततानि कर्मानुबंधि निमनुष्यलोके। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृत्था विषय प्रवाला अधश्च मूलान यनुसंततानि कर्मानुबंधि निमनुष्यलोके। भगवान कहते हैं कर्मानुबंधी यानी जीव आत्मा वो इस वृक्ष में पूरी तरह से बंद हो गई है, पूरी तरह से कैद हो गई है, पूरी तरह से बंध गई है। किस तरह से फंस गई है वो, किसके द्वारा? कर्मानु, भगवान कहते हैं कर्मों के द्वारा। अब क्योंकि ये बहुत ही भयानक वृक्ष है, जिसके हमने पढ़ा था कि वो ऊपर की ओर जड़े हैं, नीचे शाखाएं हैं, तो भगवान आज बता रहे हैं कर्मानुबंधी ने मनुष्य लोके। अब कर्म के द्वारा इस वृक्ष में फंसा जाता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल बात बताई है, मनुष्य लोके यानी केवल मनुष्य योनि ही ऐसी है जो कर्म के बंधन में आपको फंसती है। तो इसका मतलब ये है कि केवल मनुष्य योनि में ही आप एक ऐसा कार्य कर सकते हो जिससे इस वृक्ष से बाहर निकला जा सके, क्योंकि जो भसा सकता है वो निकाल भी सकता है। वैसे जानवरों की योनि में आप ऐसा कर्म नहीं कर सकते कि आप इसमें, वो फंसाने के लिए भी नहीं है, वो तो भोग योनियां है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितनी भी योनियां हैं वो भोग योनियां, आप जो कर्म करते हो उसके अनुसार आपको योनि मिली है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और उसमें आपको वैसा ही जीवन गुजारना। आप चाहकर भी सुअर के शरीर में भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हाँ, अगर कोई सुअर की इच्छा भी हो तो कैसे करेगा, करने के लिए उसे मनुष्य शरीर चाहिए होगा, है ना। तो मनुष्य शरीर जो है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए भगवान ने कहा कर्मानुबंधी मनुष्य लोक है। इस संसार वृक्ष में फंस जाता है जीव, जब मनुष्य योनि में आकर भी वो भौतिक कार्यों में लगा रहता है, केवल आहार निद्रा भय मैथुन ये चाहिए वो चाहिए उसके लिए कार्य करता है, और उसके कारण वो क्या करता है, फंस जाता है। कैसे? भगवान कहते अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, मतलब इसकी जो शाखाएं हैं वो भगवान कहते अधश्चोर्ध्वं, ऊपर और नीचे फैली हुई है, है ना। पहले भगवान ने कहा इसकी शाखाएं नीचे हैं, है ना। कल हमने पढ़ा था, भगवान ने बताया ऊर्ध्वमूलं अधःशाखं, ऊपर जड़ है नीचे शाखाएं, लेकिन आज भगवान कहते हैं अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, मतलब इसकी शाखाएं ऊपर और नीचे दोनों ओर फैले। इसका मतलब क्या है कि जब जीव पुण्य कर्म करता है तो ऊपर की ओर जाता है, और जब जीव अपराध करता है, पाप कर्म करता है, तो नीचे की ओर आता है, लेकिन रहता वो इसी संसार वृक्ष के अंदर है। जैसे मैंने कल बताया, ब्रह्मलोक से ये वृक्ष, जहां पर ब्रह्मलोक है वहां से स्टार्ट हुआ है। भगवान ने कहा था ना, जहां पर ब्रह्मा जी रहते हैं वहां से स्टार्ट हुआ है, तो वहां से स्टार्ट हुआ है। जड़ें उधर ही हैं, लेकिन शाखाएं जो है ना कुछ नीचे जा रही हैं, यानी कि जब आप पुण्य करोगे तो फिर ऊपर जाओगे। जैसे स्वर्ग लोक और ये जो मध्य लोक है ना, योग, जहां पर योगी इत्यादि रहते हैं, और बहुत सारे पितृलोक हैं, जनलोक, तपलोक, नागलोक, किन्नरलोक, ये सब लोक हैं। तो उनके अंदर आप जैसे जैसे कार्य करोगे उधर जाओगे, लेकिन कुछ शाखाएं बहुत नीचे चली जाती हैं। जैसे अगर आप अपराध करोगे तो फिर आपको नरक में भेज दिया जाएगा या पशु योनि में भेज दिया जाएगा। तो भगवान इसे बता रहे हैं। आगे कहते हैं, उन जो वृक्ष है, अब देखो, वृक्ष को फलने के लिए, वृक्ष को पोषण पाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ब्रह्मांड ब्रह्मयते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाई भक्ति लता बीज, कि गुरु और कृष्ण के कृपा से जीव को भक्ति का बीज मिलता है। अब बीज को जब आप धरती में बोते हो तो उसको पोषण प्राप्त करने के लिए आपको पानी की आवश्यकता होती है। तो जो भक्ति लता का बीज है उसका पानी क्या है, तो महाप्रभु कहते हैं श्रवण कीर्तन जले करे रे सिंचन, कि यदि आपको इस बीज का सिंचन करना है तो आपको भक्ति के वृक्ष को यदि बहुत ज्यादा मजबूत बनाना है तो आपको श्रवण और कीर्तन कंटिन्यूस करना है, कंटिन्यूस भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, कीर्तन करना है और शुद्ध भक्तों के द्वारा श्रवण करना है। इससे आपका जो भक्ति लता का जो वृक्ष है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। लेकिन ये तो भक्ति लता बीज को बढ़ाने के लिए श्रवण और कीर्तन था, लेकिन ये जो संसार वृक्ष है जिसमें हम फंसे हुए हैं, उसके लिए भी जल की आवश्यकता है। तो वो कौन सा जल है, भगवान बताते हैं, गुण प्रवृत्था विषय प्रवा, गुण प्रवृद्धा, गुण मतलब प्रकृति के जो तीन गुण हैं वो इस वृक्ष को पोषण देते हैं। देखो, बीज को बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता है, यदि पानी मिलेगा तो वो बीज बढ़ेगा, उसको पोषण मिलेगा, अगर पानी नहीं मिलेगा तो सूख कर खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही बात। जैसे अगर भक्ति लता बीज को श्रवण और कीर्तन का जल नहीं मिलेगा तो भक्ति का जो बीज हमें मिला है वो सूख जाएगा। उसी प्रकार यदि संसार वृक्ष को सुखाना है तो उसके लिए गुण प्रवृद्धा, क्योंकि गुण ही उसका जल है, तो गुणों से बाहर आना पड़ेगा। और भगवान कहते हैं विषय प्रवाला, मतलब विषय प्रवाला मतलब विषय जो है वो इसकी टहनिया मतलब कि विषय जो है वो उनके द्वारा ही हम आकर्षित होते हैं। जैसे इस भौतिक प्रकृति में विषय मिलते हैं हमारी इंद्रियों को, हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं कौन सी हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा, रसना, तो उनका विषय इसको मिलता है। आंख को दृश्य मिलता है, कर्ण को विभिन्न प्रकार की साउंड्स मिलती हैं, और जिह्वा को टेस्ट मिलता है, त्वचा को स्पर्श मिलता है, तो जिसके कारण आकर्षण हो जाता है इस भौतिक वस्तुओं के ओर। और जब आकर्षण हो जाता है तो बंधन का कारण बनते हैं। तो भगवान हमें बता रहे हैं कि ये जो वृक्ष है उसकी टहनियां ऊपर और उसकी शाखाएं ऊपर और नीचे बहुत बहुत फैली हुई हैं, गुणों के द्वारा इसको पोषण मिलता है, और विषय जो है वो विषयों के कारण जो है वो बंधन का, क्योंकि गुणों के द्वारा अब रजोगुण उत्पन्न हो गया, ठीक, उत्पन्न हो गया कि मुझे अमुक अपनी वासना पूरी करनी है, तो उस वासना को पूरी करने के लिए वस्तु भी तो प्रदान हो रही है ना संसार में, तो जिसके कारण बंधन हो जाता है। फिर भगवान कहते हैं अदश्य मूलान यनुसंस्थतानि, कि इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी है। अब पहले भी ऊपर जड़ें थी तो ऊपर से नीचे आ रहे थे, फिर अब नीचे जन्म लिया तो वापस से नीचे से ऊपर आएंगे, मतलब इस तरह से भगवान इस वृक्ष को बता रहे हैं। अनुवाद देखिए, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे की ओर फैली हुई हैं और प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दक फैली हुई हैं। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं, यथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां, ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित हैं। लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं, यथा देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां। जिस प्रकार सामान्य, अब देखो भगवान ने जैसे बताया, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, मतलब बहुत सारी शाखाएं हैं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं। जब जीव अच्छे कार्य करेगा तो उसको ऊपर वाली शाख पे बिठा दिया जाएगा। पुण्य जो जीवात्मा उच्च लोकों में चले जाएंगे, देव, गंधर्व, और अगर कार्य बुरे करेगा तो अधलोक में जाएगा, यानी पशु योनि, कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, गाय, गधे, ये सब बनना पड़ेगा। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई कोई भूखंड वीरान हो जाता है तो कोई खंड लहलहाता है। तो श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जिस प्रकार जल की मात्रा के अनुसार जिस कहीं जगह पर भूखंड वीरान हो जाता है तो कोई खंड जो है वो लहलाता है, उसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का आनुपातिक आधिक्य होता है, वहाँ उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती हैं। यानी जैसे जैसे प्रकृति के गुण आपके ऊपर विकसित होते हैं, तो गुणों के अनुसार आप कार्य करते हो, सत्व गुण में रहकर पुण्य कार्य करते हो, रजोगुण में रहकर सकाम कार्य करते हो, तमोगुण में रहकर पाप कार्य करते हो, तो उसी के अनुसार विभिन्न जीवों की योनियां प्रकट होती हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय हैं। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। अब जो भी हमारे ऊपर गुण विकसित हो जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों के अंदर उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होती है, और फिर जिस प्रकार की इच्छाएं होती हैं उसी प्रकार की इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं हम। जैसे अगर किसी को भौतिक वासना की इच्छा होती है तो वो उसी प्रकार का भोग करता है। यदि किसी को खाने पीने की इच्छा होती है, किसी को कोई भी इच्छा होती है, तो उसी के अनुसार अपनी इंद्रियां, जो उनकी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, उनके जो विषय हैं उनका भोग करते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, यथा कान, नाक, आंख आदि, जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग में आसक्त रहते हैं। अब ये शाखाओं के सिरे हैं जिनको विषय चाहिए, और विषय इसको भौतिक जगत में मिल रही है। आगे श्री रूपा जी कहते हैं, टहनियां शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय विषय हैं। ठीक है, तो ये सब इंद्रिय विषय भी यहाँ पर उसको मिल रहे हैं। सहायक जड़ें राग तथा द्वेष हैं। अब राग जिस वस्तु में आ जाता है उसको प्राप्त करने की इच्छा, और जिससे द्वेष हो जाता है उससे अनासक्ति हो जाती है, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां उन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं। जो भी हम कार्य करते हैं, चाहे धर्म हो या अधर्म हो, उन्हीं जड़ों से उत्पन्न होता है, जो चारों दिशाओं में फैली हैं। सारी जड़ें जो भगवान ने अभी बताया कि अदशोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण वृद्धा विषय अदश्य मूलान्यनुसंततानि, कि उसकी जो जड़ें हैं वो नीचे की ओर भी फैली हुई हैं। और कल भगवान ने बताया ऊर्ध्व मूलम अदः शाखम, उसकी मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं, धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न मानी जाती हैं, जो चारों दिशाओं में फैली हुई होती है। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है ना? वास्तविक जो पहले श्लोक में भगवान ने बताया ऊर्ध्व मूलम, वही वास्तविक जड़ है, किंतु अन्य जड़ें मृत्यु लोक में हैं। जब मनुष्य उच्च लोक में पुण्य कर्म का फल भोग चुका होता है तो वह इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। श्री प्रभुपाद जी ने अंत में अत्यंत सुंदर बात बताई है कि जब मनुष्य पुण्य कर्म करके उसका फल भोग चुका होता है उच्च लोकों में, तो वह इस धरा धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्म का नवीनीकरण करता है। अब यहाँ पर हम आ गए हैं, तो जिसको जैसी योनि मिली है उसके अनुसार उसने पहले कार्य किए हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि यहाँ पर तो तुम आगे हो, लेकिन कर्मानुबंधी नि मनुष्य लोक, अब मनुष्य लोक में जो आप कार्य करोगे उसी के अनुसार आपको बंधन मिलेगा। यानी श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कहा, यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। मतलब यह मनुष्य लोक में आप डिसाइड करते हो कि मुझे क्या, बाकी जितनी भी योनियां हैं वो भोग योनियां हैं, उसमें आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हो। जो आपको योनि मिली है, जैसे अगर कोई पशु योनि में आया है, कोई गधा बन गया है, कोई वानर बन गया है, कोई सुअर बन गया है, तो वो उसका कर्म क्षेत्र नहीं है, वो उसका भोग क्षेत्र है। अब उसको क्या होगा, धीरे 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 विकसित करना, उसके पास इतनी बुद्धि नहीं है, उसका उसकी चेतना अभी तक इतनी विकसित हुई नहीं है कि वो अपनी बुद्धि से ऐसा कार्य करे। जैसे सबसे निम्न चेतना होती है वृक्षों की, वृक्ष भी तो योनि है ना। अब वृक्ष अगर उन्नति करना चाहता है, सोचता है कि मुझे उन्नति करनी है, तो वो कितनी कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा इतनी कर सकता है कि अपने साइड वाले वृक्ष से ज्यादा ऊंचा उठ सकता है। बस इसके अतिरिक्त और उसके अंदर और कोई एबिलिटी नहीं होती है कि वो वृक्ष के अतिरिक्त और कुछ बन के दिखा दे। नहीं, मनुष्य चाहे तो बहुत विकसित हो, मनुष्य की बुद्धि अगर शास्त्रों के अनुसार वो कार्य करता है तो वो किधर भी जाना चाहे जा सकता है। जैसे भगवान ने बताया 14.18 में, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्तो, तुम सत्वगुण में कार्य करो उच्च लोकों में आ जाओ। मध्ये तिष्ठस्ति राजसा, रजोगुण में कार्य करो तो मध्य में रहो। अधो गच्छन्ति तामसा, जघन्य गुण वृत्तस्यो, और अगर तुम तमोगुण में कार्य करोगे तो नहीं। तो मनुष्य योनि में आपको डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है और आपको ये कर्म क्षेत्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर आप अपने इच्छा के अनुसार जो कार्य करोगे उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। इसीलिए ऋषभ देव नव योगेंद्र को अपने पुत्र को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि नाहम देहो देह भाजाम निर्लोके स्थान कामान अहर्ते विट्ट भुजान, ये तपो दिव्यम पुत्र काये न सत्वम। तो ये वो कहते हैं नायम देहो देह बाजम निर्लोके, ये जो मनुष्य देह आपको मिली है वो इस प्रकार से अहर्ते विट्ट भुजान, ये जिस प्रकार सुअरों और कुत्तों की तरह केवल आहार निद्रा भय मैथुन में समाप्त करने के लिए नहीं मिली है, बल्कि ये किस लिए मिली है, ये तपो दिव्यम पुत्र कायन, ये दिव्य तपस्या करने के लिए मिली है, क्योंकि ये आपको ऐसा चांस मिला है जिसमें आप वास्तविक गोल को प्राप्त कर सकते हो, ऐसी जगह को प्राप्त कर सकते हो जिसके लिए भगवान कहते हैं और शास्त्र कहता है निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, कि ये मनुष्य जीवन जो है उसके द्वारा उस स्थान को प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है जो वैसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। सुलभम सुदुर्लभम, वो जो बहुत कठिनाई से मिलता है वो भी इस मनुष्य देह के द्वारा प्राप्त करना अत्यंत ही ईजी हो जाता है। इसे यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, यह मनुष्य लोक हमारे लिए कर्म क्षेत्र है। तो आज भगवान ने हमें इस वृक्ष के विषय में अधिक बताया कि एक ऐसा वृक्ष है, पहले तो कल बताया कि उसकी जड़ें ऊपर हैं, शाखाएं नीचे हैं और इसके पत्ते वैदिक मंत्र हैं। और आज भगवान ने कहा कि इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है, इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तो इतना सुनने के बाद फौरन से मन में एक विचार आता है कि पता नहीं भगवान ये क्या और क्यों बता रहे हैं, ये कौन सा उल्टा वृक्ष है, इसकी कुछ शाखाएं ऊपर जा रही हैं, कुछ नीचे जा रही हैं, ये सब बहुत रहस्यमय लगता है। तो भगवान आगे बताएंगे कि हाँ, ये वाकई में बहुत रहस्यमय है, इसको समझना बहुत कठिन है, इसलिए इसको समझने का अधिक प्रयास ना करो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, डोंट फिगर इट आउट, गेट आउट। मतलब भगवान कहेंगे, अभी हम जब श्लोक नंबर 3 पढ़ेंगे उसे भगवान अर्जुन को कहेंगे कि अर्जुन, वाकई में इसको समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम क्या करो, इस वृक्ष से बाहर निकलने का प्रयत्न करो। बहुत मजबूती से पकड़े गए हैं इस मनुष्य देह में, या इस जीव जब कोई भी भौतिक जगत में आता है तो इस संसार वृक्ष में जकड़ लिया जाता है। तो बुद्धिमानता क्या है, इस वृक्ष से बाहर निकलना है, क्योंकि इस वृक्ष के अंदर रहकर चाहे हम ऊपर के लोक में चले जाएं या नीचे के लोक में चले जाएं, सदैव बंधन में रहेंगे। तो हमें इस बंधन से मुक्ति प्राप्त करनी है और उस जगह पे जाना है जहां पर कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं और जहां से कभी आना नहीं पड़ता। तो भगवान हमें अब इस वृक्ष से बाहर निकलने का रास्ता बताएंगे और जहां जाना है उस गंतव्य को बताएंगे। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।